क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत ज्ञान चर्चा क्षितिज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर संयुक्ता का सप्रेम अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज का विषय है हिंदी आलोचना, और इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु पुण्य भारत भूमि से पधारे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हैं आदरणीय प्रोफेसर संजय कुमार। प्रोफेसर जी, आपका मॉरिशस में आपका क्षितिज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
धन्यवाद संयुक्ता जी।
और संक्षेप में प्रोफेसर जी का परिचय देते हुए हम यही कहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई जो है दिल्ली के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संपन्न की, जहां आपने अपना एमए, एमफिल और पीएचडी पूरा किया, और साथ ही संप्रति आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, हिंदी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपके कुशल निर्देशन में अनेक एमफिल और पीएचडी संपन्न हुए हैं। फिर आप आधुनिक हिंदी साहित्य तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के शिक्षण में सेवारत हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ही। ई शिक्षण सामग्री के सृजन में भी आपका प्रशंसनीय योगदान रहा है, और आपकी प्रकाशित पुस्तकों में अज्ञेय का प्रकृति काव्य बहुचर्चित है, तथा आपके अनेक अनेक शोध आलेख विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। ये शोधालेख रचना, रचनाधर्मिता, काव्य तथा आलोचना, समालोचना आदि से संबद्ध हैं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी आलोचना। तो सर्वप्रथम प्रोफेसर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदी की आलोचना कितनी पुरानी है, कितनी लंबी है, उसका स्वरूप क्या है, कृपया इस पर प्रकाश डालिए।
हिंदी के पहले बड़े आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और पहले बड़े साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहासकार भी। यह हिंदी साहित्य का सौभाग्य है कि लगभग शुरुआती दौर में ही उसे आचार्य शुक्ल जैसा आलोचक मिला। आचार्य शुक्ल भारतीय परंपरा से भी अच्छी तरह परिचित थे, उसका भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। साथ में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो परंपरा रही है, और वहाँ जो समकालीन उस दौर में जो विमर्श चल रहे थे, जो बहसें चल रही थी पश्चिम में, उनसे भी वो अच्छी तरह परिचित थे। तो परंपरा और आधुनिकता के मेल से उन्होंने एक ऐसी आलोचना पद्धति का विकास किया जो कि लगभग सर्वमान्य हो गया, एक तरह से वो मानक बन गया। तो उन्होंने जिन क्षेत्रों पर काम किया, जिन विषयों पर काम किया, साथ ही कविता के संबंध में उनका जो आलोचकीय विवेक है वो इतना खड़ा था, इतना तलस्पर्शी, इतना गहरा, कि उसका प्रभाव लंबे समय तक छाया रहा, और अभी भी एक हद तक उसका प्रभाव है। उसके बाद हिंदी के दूसरे बड़े आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी की विशेषता यह है कि भारतीय परंपरा के वो प्रकांड पंडित थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा उससे परंपरा के संबंध में विशेष रूप से हिंदी आलोचना में और भी गहराई आई। और उसी परंपरा के संदर्भ में उन्होंने कबीर के महत्व को स्थापित किया। आचार्य शुक्ल कबीर को उतना महत्व दे नहीं दे पाए थे, निर्गुण संत काव्य परंपरा को विशेष रूप से स्थापित करने का और कबीर को एक बड़े कवि के रूप में स्थापित करने का श्रेय और परंपरा के संदर्भ में हिंदी आलोचना को गहराई देने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उसके बाद तीसरे बड़े आलोचक हैं रामविलास शर्मा। उन्होंने उस तरह से व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन अलग अलग कालखंडों पर पुस्तक लिखी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद, तो उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर नई कविता पर गहराई से विचार किया और हिंदी आलोचना का आगे विकास किया। उसके बाद के महत्वपूर्ण आलोचक हैं नामवर सिंह, जिन्होंने उस परंपरा को और विकसित किया और नई कविता और नई कहानी पर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। तो ये मोटे तौर पर संक्षेप में हिंदी आलोचना की परंपरा बनती है।
बहुत सुंदर। और उसमें हम सोचते हैं डॉक्टर नामवर सिंह भी आ जाते हैं और धर्मवीर भारती भी आ जाते हैं, ऐसे तो काफ़ी लोग ना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी इसी श्रृंखला में आ जाते हैं, और अभी जो हाल ही में विजयेंद्र स्नातक जी आदि ना सभी आ जाते हैं, हिंदी के जो प्रकांड रचनाकार और आलोचक भी रहे। बहुत गरिमामय इतिहास है हिंदी आलोचना।
उसके बाद और भी नाम तो काफ़ी है। डॉक्टर नगेंद्र का है।
हाँ, डॉक्टर नगेंद्र
नंदुलाड़े वाजपेयी का है
जी।
धर्मवीर भारती तो मुख्य रूप से रचनाकार है।
रचनाकार है जी। लेकिन ये एक ऐसे मर्मज्ञ रचनाकार हुए जिन्होंने रचना करते हुए रचना के साथ साथ आलोचना भी ना किसी रूप में, खास उनके जो निबंध हैं या इस तरह के जो लेख हैं।
उस क्षेत्र में अगर बात करें कवि आलोचक की या कथा आलोचक की
जी,
तो उस संदर्भ में कवि आलोचक के रूप में तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अज्ञेय, विजय देव नारायण साहिर, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण आलोचक हैं।
आगे हम देखते हैं कि प्रायः आधुनिक काल से पहले जब आलोचना की बात होती थी तो प्रमुखतः उसमें संस्कृत काव्यशास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, उन्हीं के जैसे मापदंड पर हिंदी साहित्य का जैसे पूरा मूल्यांकन किया जाता था। क्योंकि आलोचना का अर्थ ही हम लेते हैं तो आलोचना मतलब कि उसको सम्यक रूप से उसका निरीक्षण करना, समग्र रूप से निरीक्षण करना, गुण दोषों और उसकी विशेषताओं को देखना। तो आज की जो आलोचना है प्रायः हम देखते हैं उसका जो स्वरूप है वो हिंदी साहित्य गद्य साहित्य के साथ साथ हम कह सकते हैं शुरू हुआ, ऐसा मानना क्या उचित होगा कि भारतेंदु युग के साथ साथ हिंदी आलोचना का भी आरंभ हुआ।
हमारे यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र की विकसित परंपरा रही है
जी,
लेकिन आधुनिक काल में जब खड़ी बोली साहित्य की भाषा बनी, कविता की और जाहिर है गद्य विधाओं की भाषा, तो धीरे धीरे आधुनिक आलोचना का विकास हुआ। आरंभिक दौर में जिसे नाटक पे भारतेंदु ने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या उस युग के लेखकों का छिटपुट लेखन है। हिंदी आलोचना को अचानक अत्यधिक विकसित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, और इसीलिए मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया कि उन्होंने एक अचानक ऐसा लगता है कि जिसे एक नई ऊंचाई प्रदान की
जी। और आज हम आधुनिक हिंदी आलोचना को देखें तो आपके विचार में क्या स्थिति है
आधुनिक
हिंदी आलोचना?
ये मोटे तौर पे मैं क्या समकालीन
हाँ।
तो समकालीन समय में देखें तो यह जो समकालीन दौर है, चाहे कविता के क्षेत्र में देखें या फिर अन्य गण गद्य विधाओं कहानी या उपन्यास के क्षेत्र में देखें, तो यह विमर्शों का दौर है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, लेकिन साथ ही एक ऐसी धारा भी है कविता लेखन की और उपन्यास और कहानी लेखन की भी, जो इन विमर्शों के इतर भी विकसित हो रहा है। तो आलोचना भी, आलोचना चूंकि रचनाओं पर आधारित होती है तो उसी के अनुरूप आलोचना भी विकसित हो रही है।
तो आपने, हम देख रहे थे कि आपके जो शोध आलेख हैं उसमें अधिकांशतः आलोचना से भी संबंधित है, तो संप्रति आपकी इस दिशा में क्या साधना है?
मैं अज्ञेय, रघुवीर सहाय, ये दो बड़े रचनाकार हैं जिन पर मैं लगातार सोचता विचारता रहा हूँ और एक ख़ास संदर्भ में इन पर सोचता विचारता रहा हूँ, और वो संदर्भ है उत्तर आधुनिकता का। उत्तर आधुनिकता के आने के बाद से और उनके चिंतकों का जब प्रभाव बढ़ा पूरे यूरोप में, अमेरिका में, तो जाहिर है भारत में भी उस पर चर्चा शुरू हुई। उत्तर आधुनिकता ने विचार के निश्चित रूप से कुछ नए प्रश्न उठाए हैं, नया क्षितिज खोला है, और उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में फिर से आधुनिकतावाद पर और आधुनिकता पर विचार करना जरूरी हो गया। तो मेरे चिंता और लेखन का क्षेत्र मुख्य रूप से यही है कि आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद और इस संदर्भ में हिंदी कविता का विश्लेषण, ये मेरे चिंतन और सरोकार का मुख्य रूप से क्षेत्र है।
एक यह भी जानना चाहते हैं आपसे कि एक अच्छे आलोचक के गुण क्या होते हैं, साहित्यिक आलोचक के?
एक अच्छे आलोचक का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, और आज के संदर्भ में जो मुझे ज़्यादा आवश्यक जान पड़ रहा है वह है ईमानदारी और साहस, कि आप निष्पक्ष होकर लिखें, और जब आप लिखें तो आपके सामने यह नहीं होना चाहिए कि रचनाकार इससे खुश होगा या नाराज होगा, बल्कि आपके सामने हिंदी भाषी जनता का चेहरा होना चाहिए, और उसके प्रति सरोकार और ईमानदारी रखकर आपको लिखनी चाहिए। किसी रचनाकार की बेवजह या सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण या अपने लगाव के कारण या अपने पूर्वाग्रह के कारण, और वो पूर्वाग्रह अगर वैचारिक नहीं व्यक्तिक है तो और ख़तरनाक है। तो इस पूर्वाग्रह के कारण कई बार मुझे लगता है कि दिखाई पड़ता है कि कहीं व्यक्तिगत प्रशंसा का माहौल है, कहीं व्यक्तिगत आलोचना का माहौल है, तो इस माहौल में निष्पक्षता, ईमानदारी और साहस, इन तीनों की विशेष रूप से आवश्यकता है।
अंत में प्रोफेसर संजय कुमार जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिंदी आलोचना के विकास की कौन सी संभावनाएं नज़र आ रही हैं?
हिंदी आलोचना की विकास का संबंध गहरा, उसका गहरा संबंध जाहिर है हिंदी भाषा के साथ है, हिंदी भाषा भाषी जनता के साथ है, और इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि स्वयं भारत में हिंदी भाषा का ज्ञान की भाषा के रूप में विकास नहीं हुआ है। राजभाषा हिंदी बनेगी या नहीं बनेगी, इस बात को लेकर कशमकश अभी भी जारी है, और जो भाषा का मामला है वो सिर्फ चूंकि भाषा का मामला नहीं होता, तो इसीलिए भारत में भी जो भाषा का संघर्ष चल रहा है, असल में वो सिर्फ भाषा का संघर्ष नहीं है, उसकी एक वर्गीय पृष्ठभूमि या वो एक वर्ग संघर्ष के रूप में भी दिखाई पड़ता है। लूज अर्थ में वो अभिजात्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का संघर्ष है, और इसमें सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि बाकी भारतीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, बंगला, मराठी, ये जो भारतीय भाषाएं हैं उन्हें बोलने लिखने वाले और उन्हें उस माध्यम से, उस भाषा की माध्यम से पढ़ने लिखने वाले लोग आम तौर पर निम्न वर्ग के लोग होते हैं, और जो अभिजात्य वर्ग है उसकी भाषा अंग्रेजी है। तो जब तक भारतीय भाषाएं ज्ञान सिर्फ रचनात्मक साहित्य नहीं बल्कि वो बाकी क्षेत्रों में भी, समाज विज्ञान के क्षेत्र में, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी, जब तक वो ज्ञान की भाषा नहीं बनेगी और जब तक वहाँ जो सत्ता है वो अंग्रेजी के नाम पर जब तक भारतीय भाषाओं को दबाती रहेगी, तब तक भारतीय साहित्य और भारतीय भाषा और इसी संदर्भ में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य तब तक उतना विकसित नहीं हो सकता, इसलिए उसके विकास का सवाल उसके समाज के विकास के, उसके देश के विकास के और वहाँ भाषा की स्थिति के सवाल से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब वहाँ विकास होगा तो जाहिर है इस क्षेत्र में भी विकास होगा।
बहुत सटीक तरीके से आपने इस बात को स्पष्ट किया, हिंदी की गरिमा में ही भारतवासियों की गरिमा है, सत्य है। तो प्रोफेसर संजय कुमार, हिंदी आलोचना संबंधी आपके अनुभवपूर्ण विचारों के लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। और क्षितिज कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं, ध्यान के लिए हम आप प्रति अनुग्रहित हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार।
नमस्कार, धन्यवाद।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।